नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता विफल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर, प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों में जुटे। सरकार ने निर्यात पर अंकुश लगाने और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। बिहार के कटिहार में सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत और बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मांडवाल ने स्वर्ण पदक जीते। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 21 घंटे तक चली ऐतिहासिक शांति वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बताया कि बातचीत में कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मुख्य मतभेद ईरान से परमाणु हथियार न बनाने की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को लेकर है। श्री वेंस ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के समक्ष अंतिम प्रस्ताव रखा है और अब ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
We've had a number of substantive discussions with the Iranians.
हमने ईरान के साथ बातचीत की है, ये अच्छी खबर है। बुरी खबर ये है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं, और मुझे लगता है कि ईरान के लिए ये ज्यादा बुरी खबर है, ना कि अमेरिका के लिए। हम बिना किसी समझौते पर पहुंचे ही अमेरिका लौट रहे हैं। हमने ये बहुत साफ कर दिया है कि हमारी सीमाएं क्या है, किन बातों पर हम उनकी बात मानने को तैयार हैं और किन बातों पर हम उनकी बात नहीं मानेंगे, और ईरान ने हमारी शर्तें मानने से इनकार कर दिया है।
Not to accept our terms.
इससे पहले ईरान सरकार ने सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक बयान में संकेत दिया था कि कुछ मतभेद बने रहने के बावजूद संवाद जारी रहेगा। ये बैठक अमेरिका और ईरान के बीच कई दशकों के बाद उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष वार्ता रही। वार्ता के प्रमुख मुद्दों में पश्चिम एशिया में युद्ध विराम, अमेरिका में रोकी गई ईरानी संपत्तियों की रिहाई और होर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़े विषय शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ समझौता हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अभियान जारी है और अमेरिका पहले ही जीत चुका है।
मुझे कई जानकारियां मिल रही हैं, जैसा कि शायद आपने देखा ही होगा, कई घंटों से वार्ता जारी है। देखते हैं क्या होता है, चाहे कुछ भी हो, जीत हमारी ही होगी। हमने उस देश को पूरी तरह हरा दिया है। हो सकता है वे कोई समझौता कर लें और हो सकता है ना करें।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से भेंट की। इस दौरान क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने परस्पर सहयोग की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर विचार विमर्श किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने में संयुक्त अरब अमीरात सरकार के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर जयशंकर की यात्रा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की खाड़ी देशों की यात्रा के साथ पश्चिम एशिया में बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है। सरकार ने कहा है कि उर्वरक संयंत्रों को आवंटित कुल गैस की मात्रा में 5% की वृद्धि की जा रही है। इससे ये 6 महीने की औसत खपत की लगभग 95% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि मार्च से अब तक लगभग 4,15,000 पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जबकि लगभग 4,55,000 अतिरिक्त ग्राहकों ने नए कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराया है। सरकार ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कार्रवाई जारी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पश्चिम एशिया क्षेत्र में संचालित भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी पोत जग विक्रम ने कल सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर लिया। इसमें 24 नाविक सवार हैं और ये लगभग 20,400 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आ रहा है। इसके 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। सरकार ने डीजल पर निर्यात शुल्क 21.5 रूपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रूपये कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि विमानन ईंधन पर भी निर्यात शुल्क 29.5 रूपये से बढ़ाकर 42 रूपये कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल पर निर्यात शुल्क 0 रहेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज सवेरे लगभग 11 बजे सिलीगुड़ी के कावाखाली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे दार्जिलिंग हिल्स और जलपाईगुड़ी जिलों के 13 भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा दार्जिलिंग जिले की सभी 5 सीटों, कलिम्पोंग जिले की 1 सीट और जलपाईगुड़ी जिले की 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तृणमूल कांग्रेस के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की हुगली स्थित डनलप फैक्ट्री ग्राउंड में होने वाली जनसभा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। ये जनसभा आज चिनसुरहा और सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित की जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 अप्रैल को सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी रैली में हिस्सा लेंगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कटवा, जांगीपुर और कुशमंडी में जनसभाएं की। प्रधानमंत्री ने तुष्टिकरण समाप्त करने के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया।
भाजपा का संकल्प है बंगाल में UCC लागू कर तुष्टिकरण की राजनीति को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। अपनी पहचान और अपने भविष्य के लिए अब बंगाल परिवर्तन करके रहेगा।
निर्वाचन क्षेत्र की जानकारी के हमारी श्रृंखला में आज हम तमिलनाडु के कडलूर जिले की वृद्धाचलम विधानसभा सीट की चर्चा कर रहे हैं। इस सीट पर पहले चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा।
वृद्धाचलम विधानसभा क्षेत्र तटीय कडलूर जिले में स्थित है और ये एक नदी तटीय शहर है। इस जिले में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और यहाँ कुल 2,46,818 मतदाता हैं। यह जिला प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में आता रहता है। वृद्धाचलम सीट पर इस बार अभिनेता विजयकांत द्वारा स्थापित पार्टी DMDK की अध्यक्षा प्रेमलता विजयकांत चुनाव लड़ रही है। यह पहली बार है जब DMDK ने DMK के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के साथ गठबंधन किया है। वृद्धाचलम अपने सिरेमिक औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है और इसे देश का शक्कर का कटोरा भी कहा जाता है। काजू अनुसंधान का क्षेत्रीय केंद्र इसी शहर में स्थित है। इस विधानसभा सीट से अब तक कांग्रेस ने 5 बार जबकि DMK, AIA, DMK और DMDK ने 2-2 बार जीत हासिल की है। इस शहर की साक्षरता दर 78% है। वर्तमान में यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार MRR राधाकृष्णन विधायक हैं। जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
बिहार के कटिहार जिले में एक भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस घटना में एक मोटरसाइकिल सवार की भी मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। साधना सप्ताह के दौरान कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 3,18,00,000 से अधिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए गए। 2 से 10 अप्रैल तक आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के बीच निरंतर सीखने, कौशल संवर्धन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना था। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं शक्ति प्रताप सिंह।
किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुजीत कलकल ने 65 किलोग्राम वर्ग और अभिमन्यु मांडवाल ने 70 किलोग्राम वर्ग के स्वर्ण पदक अपने नाम किए। भारत की प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण समेत कुल 14 पदक हो गए हैं। इस बीच अमन शहरावत 61 और मुकुल दहिया 86 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने साइप्रस में महिला कैंडिडेट्स प्रतियोगिता के 11वें दौर में अलेक्जेंडरा गोरिया कचीना पर जीत दर्ज की। अब उनके 7 अंक हैं और उनकी बढ़त बरकरार है। वहीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने जू जिनर के साथ ड्रॉ खेला। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दो मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। इंडिया सुपर लीग फुटबॉल में आज इंटर काशी एफसी का मुकाबला मोहम्मदन एससी से और मोहन बगान सुपर जायंट का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा। इससे पहले कल केरल ब्लास्टर्स एफसी ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराया।
मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल तथा कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान व्यक्त किया है। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में अगले दो दिन गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, केरलम, माहे, दक्षिणी कर्नाटक, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी आज इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया घटनाक्रम पर विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की मॉरिशस में भारत की स्पष्ट स्थिति दिखते हुए दैनिक जागरण ने डॉक्टर जयशंकर का बयान दिया है। पत्र के अनुसार जयशंकर बोले, पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी, नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना गलत। कहा, जब ऊर्जा दुर्लभ महंगी हो जाती है तो इसका पूरा समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने संपादकीय में हर हाल में खुले होर्मुज शीर्षक से लिखा है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की बातचीत पर विडंबना यह है कि विश्व जिस वार्ता की सफल होने की प्रतीक्षा कर रहा है उसे लेकर आशंकाएं अधिक हैं और उम्मीदें कम, क्योंकि ये वार्ता गहरे अविश्वास के बीच हो रही है। वीर अर्जुन ने सफलता संदिग्ध पर संतुष्ट सब शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि समझौते की टेबल पर दोनों पक्ष तभी आते हैं जब वे किसी न किसी कमजोरी से ग्रस्त हो। अमेरिका और ईरान इस युद्ध का परिणाम जानते हैं। अमेरिका अपने जनधन और बारूदी संसाधनों से डरा हुआ है तो ईरान हमले के दुष्परिणाम का एहसास कराने की जिद पर अड़ा है, भले ही वो तबाह हो जाए। जनसत्ता की सुर्खी है, भारत अमेरिका एलपीजी सहयोग बढ़ाएंगे, विदेश सचिव विक्रम मिश्री का अमेरिका दौरा खत्म। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार पर अमर उजाला के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, बदलाव को बंगाल तैयार, घुसपैठियों को हर हाल में छोड़ना होगा देश। पत्र के अनुसार ममता बनर्जी ने उम्मीदवारी रद्द कराने की कोशिश का भाजपा पर आरोप लगाया। पंजाब केसरी का शीर्षक है, भाजपा लागू करेगी बंगाल में सीएए। देशबंधु की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले ईडी की कार्रवाई, पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के आवास पर छापेमारी, भर्ती घोटाले मामले में दोबारा पूछताछ की जा सकती है। दैनिक भास्कर के अनुसार ऐतिहासिक अंतरिक्षित यात्रा से सुरक्षित लौटे, अब चांद्र पर लैंडिंग की तैयारी, आर्टमिस 2 का ध्वनि से 23 गुना तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश। राजस्थान पत्रिका ने खुशी शीर्षक से दिया है, पहली बार जंगल में जन गामिनी चीता बनी नानी, कुनो नेशनल पार्क में गामिनी की बेटी ने 4 शावकों को जन्म दिया।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता विफल। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री के साथ आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर, प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता रैलियों में जुटे। सरकार ने निर्यात पर अंकुश लगाने और घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए डीजल और विमानन ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया। बिहार के कटिहार में सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। और बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में सुजीत कलकल और अभिमन्यु मांडवाल ने स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।